ये परार्थानुमान में पंचावयव वाक्य की चर्चा चल रही है, तो उसमें बताया कि पर्वत जो है वह पक्ष है, अग्निमत्व साध्य है और धूमवत्व हेतु है। इस धूमवत्व हेतु को बताया कि यह हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, माने इस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। व्याप्ति दो प्रकार की होती है, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। तो अगर दोनों व्याप्ति जिस हेतु में रहे उसका नाम है अन्वय व्यतिरेकी हेतु। तो यह जो धूमवत्व हेतु है, धूमवत्व का अर्थ बताया था धूम संबंध, ये जो वत्व मत्व होता है ना उसका अर्थ होता है संबंध। तो अग्निमत्व माने अग्नि संबंध, धूमवत्व माने धूम संबंध। तो इस तरह से यह जो धूमवत्व हेतु है यहाँ कहाँ पर, तो पर्वत अग्निमान धूमवत्वात्, यहाँ पर जो धूमवत्व हेतु है यह अन्वय व्याप्ति से भी युक्त है और व्यतिरेक व्याप्ति से भी युक्त है। अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या होता है, ये आप लिख चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः। माने उसके होने पर, किसके होने पर, माने हेतु के होने पर, अगर साध्य का सत्व हो, माने हेतु के सत्व रहने पर साध्य का सत्व होना अन्वय है और हेतु के अभाव में साध्य का अभाव होना व्यतिरेक है। तत्सत्वे तत्सत्वम, तत् का अर्थ मैंने तस्य बताया था, तस्य से किसको पकड़ना है, हेतु को पकड़ना है। तो हेतु सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वम का जो तत् है उसे साध्य को पकड़ना है। तो तत्सत्वे तत्सत्वम माने हेतु सत्वे साध्य सत्वम। अच्छा, तदभावे तदभाव में भी इसी तरह से पहले तत् से जो है हेतु को पकड़ना है और दूसरे तत् से जो है साध्य को पकड़ना है। तो तदभावे माने हेतु अभावे, तदभाव माने साध्य अभाव। तो हेतु के रहने पर साध्य का सत्व हो और हेतु के अभाव में साध्य का अभाव हो, ये दोनों चीजें अगर जहाँ युक्त होती हैं उस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी कहा जाता है। तो वही कहा कि अन्वय व्यतिरेकी इसलिए इसको मानते हैं कि अन्वय न व्यतिरेके न च व्याप्ति मुक्तवात्, कि यहाँ पर धूमवत्व और अग्निमत्व में अन्वय के द्वारा भी व्याप्तिमत्व है, माने व्याप्ति संबंध है, और व्यतिरेक के द्वारा भी व्याप्ति संबंध है, वह सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है, तो तथा ही यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम यथा महानस्य इति अन्वय व्याप्ति। पहले अन्वय व्याप्ति बता रहे हैं, आपको जो मैंने बताया था वो तो एक जनरल रूल है, जनरल बात है कि तत्सत्व तत्सत्वम। जब हम किसी विशेष हेतु को लेंगे और विशेष साध्य को लेंगे तो इस तरह से बोलना होगा, जैसे यहाँ पर विशेष हेतु लिया धूमवत्व, विशेष साध्य लिया अग्निमत्व, तो इसके लिए पंक्ति क्या बनेगी कि यत्र यत्र धूमवत्वम, माने जहाँ जहाँ धूमवत्व है, धूम संबंध है, तत्र तत्र अग्निमत्वम, वहाँ वहाँ अग्नि संबंध है, यथा महानसे जैसे रसोई घर में, इति अन्वय व्याप्ति, यही जो है अन्वय व्याप्ति कहलाती है। इसमें आपने देखा ना तत्सत्वे तत्सत्वम, माने धूमवत्व सत्वे अग्निमत्व सत्वम, ये यहाँ पर बैठ रहा है और उदाहरण भी है महानस। इस तरह से अन्वय व्याप्ति हो रही है, किसमें किसमें, धूमवत्व में और अग्निमत्व में अन्वय व्याप्ति यहाँ पर फिट बैठ रही है। अब महानसे धूम अग्नियो हो अन्वय सद्भावान, क्योंकि महानस वाली जगह में दोनों का अन्वय का सद्भाव है। अन्वय का सद्भाव माने वही तत्सत्व तत्सत्वम का सद्भाव है, माने स्थिति है, होना है। तो महानस में धूम अग्नि का अन्वय सद्भाव है, इसलिए इन दोनों में धूम और अग्नि में अन्वय व्याप्ति संभव हो जाती है। एवं यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृदय, जहाँ अग्नि नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, मैंने जो कहा था कि तदभावे तदभाव हमें पहले तत् से हेतु को पकड़िए, दूसरे तत् से साध्य को पकड़िए, तो क्या होता है ना, व्यतिरेक मतलब अभाव होता है और अन्वय मतलब भाव होता है। तो अभाव वाला जब, व्यतिरेक वाला जब कहते हैं ना तदभावे तदभाव, उसमें पहले वाले से ना हेतु को नहीं पकड़ करके उल्टा पकड़ना, क्योंकि ये इसका नाम ही है अभाव। तो जो भाव में स्थिति रहेगी उसके विपरीत जो है ना वो अभाव वाले में स्थिति रहेगी। जैसे भाव में तत्सत्य तत्सत्वम था ना, तो उसमें पहले तत् से हेतु को पकड़ते थे, दूसरे तत् से साध्य को पकड़ते थे, ये भाव वाला है अन्वय है। और व्यतिरेक अभाव वाला है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, माने पहले तद अभावे में जो तत् है उससे साध्य को पकड़ेंगे, दूसरे वाले तत् से जो है हेतु को पकड़ेंगे। तो अब क्या होगा कि साध्याभावे हेतु भाव, तद अभावे तद अभाव का मतलब होगा साध्याभावे हेतु भाव। तो यहाँ पर साध्य क्या है, अग्नि है, और हेतु क्या है, धूम है। इस तरह से यहाँ पर लाइन क्या बन जाएगी कि यत्र अग्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। यथा महाह्रदे, ऐसे महाह्रद में, महाह्रद किसको कहते हैं, तो जो बड़ा तालाब होता है जिसमें बहुत गहराई होती है तालाब में, सरोवर में, उसको महाह्रद कहा जाता है। तो उस सरोवर में यत्र अग्नि नास्ति, तो महाह्रद में जो है अग्नि नहीं है, अग्नि का अभाव है, तो तत्र धूमोपि नास्ति, वहाँ धूम का भी अभाव है। तो तदभावे तदभाव हो गया, माने साध्य अग्नि अभावे हेतु धूम अभाव, कहाँ पर, तो महाह्रद में। इति इयम व्यतिरेक व्याप्ति, इसी का नाम है व्यतिरेक व्याप्ति। कैसे है व्यतिरेक व्याप्ति, तो आगे कहते हैं कि महाह्रदे धूम अग्नियो हो व्यतिरेक से सद्भाव संभव। महाह्रद में माने गहरे तालाब में धूम और अग्नि का जो व्यतिरेक है, व्यतिरेक माने अभाव है, उसका सद्भाव संभव, उस अभाव का सद्भाव संभव है, माने वो अभाव वहाँ पर रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जहाँ पर ये अग्निमत्व साध्य है और धूमवत्व हेतु है, वहाँ पर हेतु जो है वह अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्वय व्याप्ति का भी संभव है और व्यतिरेक व्याप्ति का भी संभव है। तो महानस जो है उदाहरण है अन्वय व्याप्ति का, और महाह्रद जो है वह उदाहरण है व्यतिरेक व्याप्ति का। अब व्यतिरेक व्याप्तिस्तु अयं क्रमः, आपके ग्रंथ में बताया है कि व्यतिरेक व्याप्ति का यह क्रम होता है। क्या क्रम होता है, तो जो मैंने बताया था ना आपको कि अन्वय माने अभाव और व्यतिरेक माने, अन्वय माने भाव और व्यतिरेक माने अभाव, तो अन्वय में जिसको पकड़ना है ना हेतु साध्य को जिस क्रम से, उसका विपरीत क्रम करना है व्यतिरेक में, तो वही चीज यहाँ पर बताएंगे। अन्वय व्याप्तो यद व्याप्यम तदभाव अत्र व्यापक, यच्च व्यापकम तदभाव अत्र व्याप्त इति। ये जब व्याप्ति की बात आती है, तो मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है कि व्याप्ति व्याप्ति क्या है, एक स्वाभाविक संबंध है, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, तो साहचर्य संबंध जो है ना उसी का नाम है व्याप्ति। जहाँ व्याप्ति संबंध होगा वहाँ पर एक व्याप्य होगा और दूसरा व्यापक होगा, ठीक है। इसको भी बताया था कि जो कम जगह पर हो वह जगह होता है वह व्याप्य होता है, और जो ज्यादा जगह पर विद्यमान रहे वह व्यापक होता है। इतनी बात मैंने बताई है, और इससे आगे की बात भी आज मैं सिखा रहा हूँ कि व्याप्य और व्यापक की पहचान। एक तो मैंने बताया कि कम जगह पर अल्प देश वृत्ति, माने न्यून देश वृत्ति और अधिक देश वृत्ति, तो न्यून देश वृत्ति जो हो ना वह व्याप्य है, और अधिक देश वृत्ति जो हो वह व्यापक है। न्यून देश वृत्ति समझ रहे हैं ना, न्यून माने थोड़े, देश माने जगह, और वृत्ति माने विद्यमान रहने वाला, तो थोड़े देश में विद्यमान रहने वाला को कहते हैं न्यून देश वृत्ति, और अधिक देश में रहने वाला, देश माने स्थान, अनेक स्थान, अधिक स्थान में रहने वाला जो होगा वह होगा व्यापक। तो ये तो आप जानते हैं, आज कुछ और जानना है आपको व्याप्य और व्यापक की पहचान करने के लिए। ऐसा है कि व्याप्ति का जो वाक्य होता है ना, जैसे धूम और बहनी में है, आप व्याप्ति साहचर्य नियम किस तरह का है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहनी, तो ये जो साहचर्य नियम है, तो साहचर्य नियम में जिसका पहले उल्लेख रहता है वह व्याप्य होता है, और जिसका बाद में उल्लेख रहता है वह व्यापक होता है। तो जैसे यत्र यत्र धूमः, ये धूमः पहले है तो यह हो गया व्याप्य, और तत्र तत्र बहनी ये बाद में है तो ये हो गया व्यापक। तो ये एक नया मैंने अभी बताया है, आपकी पुस्तक में शायद इस बात को यहाँ पर बताया जाएगा। तो साहचर्य नियम में जिसका पहले उल्लेख होता है वह व्याप्य होता है और जिसका बाद में उल्लेख होता है वह व्यापक होता है, ये ध्यान रखना है। मैंने उदाहरण में भी सिद्ध कर दिया, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र महनिः, यह जो साहचर्य नियम है इसमें पहले धूम का उल्लेख है तो वह व्याप्य हो गया और महनिः का उल्लेख बाद में है तो वह व्यापक हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात करें कि अन्वय व्याप्तो, व्याप्ति दो प्रकार की पहले बताई गई, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो कहते हैं कि अन्वय व्याप्तो यद व्याप्यम, अन्वय की व्याप्ति में जो व्याप्य होता है, तो अब जैसे यहाँ पहले का जो उदाहरण है यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम, इसमें व्याप्य कौन है तो धूमवत्व जो है वह व्याप्य है। तत् अभाव अत्र व्यापक, और उसका अभाव जो है ना यहाँ पर किसका अभाव, धूम का अभाव, हेतु का अभाव जो है अत्र व्यापक, अत्र व्यापक अत्र से किसको लेना है, व्यतिरेक व्याप्ति को, तो व्यतिरेक व्याप्ति में वह व्यापक हो जाता है माने विपरीत होता है। अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होगा वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक कहलाएगा, और इसका विपरीत ही होगा, माने अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य है वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक होगा, और अन्वय व्याप्ति में जो व्यापक है वह व्यतिरेक व्याप्ति में क्या हो जाता है, व्याप्य हो जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति का क्या उदाहरण था कि यथा अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृदये, तो इसमें आपने देखा कि प्रथम उल्लेख किसका है, यत्र अग्निर्नास्ति, अग्नि का प्रथम उल्लेख है, तो उस नियम के अनुसार जिस नियम में मैंने कहा था कि यह साहचर्य नियम में जिसका पहले उल्लेख हो वह व्याप्य होता है और जिसका बाद में उल्लेख हो वह व्यापक होता है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, अग्नि व्याप्य होने लगेगी, धूम जो है व्यापक होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना व्यतिरेक व्याप्तिस्तु अयं क्रमः, व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है, उल्टा होता है, जो अन्वय व्याप्ति में व्याप्य है वह यहाँ व्यापक होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर यत्र अग्निर्नास्ति, यहाँ पर व्यापक अग्नि का जो है ना पहले उल्लेख हुआ है उल्टा, और तत्र धूमोपि नास्ति यहाँ पर व्याप्य का उल्लेख बाद में हुआ है। तो अन्वय व्याप्ति में पहले व्याप्य का उल्लेख होता है, बाद में व्यापक का उल्लेख होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में पहले व्यापक का उल्लेख होता है, बाद में व्याप्य का उल्लेख होता है, ये सारांश हुआ। फिर से एक बार पंक्ति को देख लेते हैं, अन्वय व्याप्तो यद व्याप्यम तद अभाव अत्र व्यापक, अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है वह तत् अभाव, उस व्याप्य का अभाव जो है यहाँ पर व्यापक होता है, जिसको हम कहते हैं तत्र धूमोपि नास्ति, इस शब्द से कहते हैं। अयच्च व्यापकम तत् अभाव अत्र व्याप्तः, और अन्वय व्याप्ति में जो व्यापक होगा वह उसका अभाव जो है अत्र व्याप्तः, यह व्याप्त होगा, व्याप्त और व्याप्य पर्यायवाची शब्द है, मैंने बताया हुआ है, तो उसका विपरीत होना, अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य व्यापक है, व्यतिरेक व्याप्ति में उसका अभाव जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, व्याप्य व्यापक हो जाएगा, व्यापक व्याप्य हो जाएगा। ये श्लोक वार्तिक नाम का जो है ना एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस क्रम को श्लोक के द्वारा जो है ना बताया गया है कि व्यतिरेक व्याप्ति का परिचय दिया गया है, तो उन श्लोकों को जो है ना अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोः यादृक इष्यते, भावयोः पदार्थयोः, माने भाव पदार्थ जो है उसमें व्याप्य व्यापक भाव यादृक इष्यते, व्याप्य व्यापक भाव जिस तरह की मतलब होती का जिस तरह का होता है भाव, दो भाव पदार्थों में तयोः अभावयोः, और उन दोनों भाव पदार्थों का जो अभाव होता है तस्माद् विपरीतः प्रतीयते, उसका अभाव जो है वह विपरीत रूप से प्रतीत होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव तो दोनों में है, चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, लेकिन अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों में क्या होता है कि जैसा भाव हो पदार्थ का होता है ना उसके विपरीत जो है वह अभाव पदार्थ का होता है, यही कहा तयोः अभावयोः तस्माद् विपरीतः प्रतीयते, उन दोनों का अभाव जो है माने हेतु साध्य का जो अभाव है वह उससे विपरीत प्रतीत होता है। फिर आगे बताते हैं अन्वये साधनम व्याप्यम जब अन्वय व्याप्ति का वाक्य बनाते हैं या अन्वय व्याप्ति जहाँ रहती है वहाँ पर साधनम व्याप्यम, साधन जो है व्याप्य होता है और साध्यम व्यापकम इच्छते, और साध्य जो है वह व्यापक होता है। ये साधनम और साध्यम ये क्या है, तो साधनम अर्थात हेतु और साध्यम तो आप समझते हैं ना, जिस वस्तु को आप अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं वह वस्तु है साध्य। जैसे पर्वत पर बनी को आप अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं तो बनी हो गया साध्य, और किस साधन से सिद्ध किया, धूम रूप साधन से सिद्ध किया तो हुआ हो गया साधन। तो अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में साधन जो होता है वह व्याप्य होता है, माने हेतु जो है वह व्याप्य होता है, और साध्यम व्यापकम स्थिति, और साध्य जो बहनी है वह व्यापक होता है। तद अभाव अन्यथा, और उसका अभाव जब होगा तो अन्यथा होगा, अन्य प्रकार से होगा, विपरीत प्रकार से होगा। क्या कि व्याप्यो व्यापक, कि व्याप्य जो है वहाँ व्यापक हो जाएगा, और साधनात्य, और साधन माने हेतु जो है वह उसमें व्यापक हो जाएगा। तो व्याप्य व्यापक हो जाएगा और व्यापक व्याप्य बन जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। व्याप्य से वचनम पूर्वम, वो जो मैंने पहले बताया था कि साहचर्य नियम में व्याप्य का कथन जो है, वचन जो है वह पूर्व में होता है अन्वय व्याप्ति में, और व्यापक से ततः परम, और व्यापक का जो उल्लेख होता है वह ततः परम माने बाद में होता है। एवं परीक्षिता व्याप्ति, इस तरह से जो व्याप्ति परीक्षित होती है माने ज्ञात होती है, स्फुटी भवति तत्वतः, तो तत्वतम तात्विक रूप से वह स्फुटी भवति माने स्पष्ट होता है। तो दो चीजें बताई गई कि अन्वय व्याप्ति में साधन व्याप्य होगा और साध्य व्यापक होगा, और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होगा कि उसका अभाव लेना है, साधना अभाव और साध्या अभाव, तो उसका विपरीत हो जाएगा, साधना भाव जो है ना वह व्यापक हो जाएगा और साध्या भाव जो है वह व्याप्य हो जाएगा व्यतिरेक व्याप्ति में। तो एक तो व्याप्य व्यापक ये सिखाया आपको, दूसरा जो मैंने पहले बताया था वो बात है कि साहचर्य नियम में जिसका पहले उल्लेख हो वह व्याप्य है, ये अन्वय व्याप्ति की मैं बात कर रहा था, और जिसका बाद में उल्लेख हो वह व्यापक होता है। इस तरह से श्लोक वार्तिक नाम के ग्रंथ में भी जो है इस तरह से व्याप्य व्यापक भाव का विवरण मिलता है। तो आज का पाठ जो है यहीं रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।